पृथु महाराज की भेंट 49 क्या है?
49
तो 39 है ना,
39
है,
39
श्लोक संख्या 49। वैन्यः
वैन्यः
तो
दुर्यः
दुर्यः महताम
महताम
संस्थित्या
संस्थित्या
आध्यात्मा
आध्यात्मा
शिक्षया
शिक्षया
आप्ता
आप्ता
कामं
कामं
इव
इव
आत्मानं
आत्मानं
मेने
मेने
आत्मनि
आत्मनि
अवस्थितः
अवस्थितः।
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया
आत्मकामं इवात्मानं
आत्मकामं इवात्मानं
मेन आत्मन्यवस्थितः
मेन आत्मन्यवस्थितः।
श्लोक में मेन लिखा है कि मैंने लिखा है? श्लोक में
मेन लिखा है, मेन
मेन। वैन्यस्तु धुर्यो महताम
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया
आप्तकामं इवात्मानं
आप्तकामं इवात्मानं
मेन अध्यात् मेन आत्मन्यवस्थितः
मेन आत्मन्यवस्थितः।
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया
आप्तकामं इवात्मानं
आप्तकामं इवात्मानं
मेन आत्मन्यवस्थितः
मेन आत्मन्यवस्थितः।
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया
आप्तकामं विवात्मानं
मेन
आत्मन्यवस्थितः।
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया
आप्तकामं विवात्मानं
आप्तकामं विवात्मानं
मेन आत्मन्यवस्थितः
मेन आत्मन्यवस्थितः।
वैन्यस्तु धुर्यो महताम
संस्थित्याध्यात्मशिक्षया।
वैन्यः
वैन्यः
वेन महाराज के पुत्र
वेन महाराज के पुत्र
पृथु
पृथु
तु
तु
निस्संदेह
निस्संदेह
धुर्यः
धुर्यः
प्रमुख
प्रमुख
महताम
महताम
महापुरुषों के
महापुरुषों के
संस्थित्या
संस्थित्या
पूर्णतया स्थिर होकर
पूर्णतया स्थिर होकर
आध्यात्म शिक्षया
आध्यात्म शिक्षया
आत्म साक्षात्कार के विषय में
आत्म साक्षात्कार के विषय में
आप्त
आप्त
लब्ध
लब्ध
कामम
कामम
इच्छाएं
इच्छाएं
इव
इव
सदृश
सदृश
आत्मानम
आत्मानम
आत्मतोष में
आत्मतोष में
मैंने
मैंने
विचार किया
विचार किया
आत्मने
आत्मनि
अपने में
अपने में
अवस्थितः
अवस्थितः
स्थित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। महाराज पृथु अपने तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। तात्पर्य, भक्ति में स्थिर रहने से मनुष्य को अत्यंत आत्मतोष होता है। वास्तव में आत्मतोष तो शुद्ध भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। चूंकि भगवान को किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी होती, अतः वे अपने आप में पूर्णतः तुष्ट रहते हैं। इसी प्रकार से जिस भक्त को भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रहती, वह परमेश्वर के ही समान आत्मतुष्ट रहता है। प्रत्येक व्यक्ति मन शांति तथा आत्मतोष के पीछे दौड़ता है, किंतु ये गुण भगवान के शुद्ध भक्त होने पर ही प्राप्त हो सकते हैं। पिछले श्लोकों में राजा पृथु के अपने अथाह ज्ञान तथा पूर्ण भक्ति के विषय में जो कुछ कहा है, उसकी यह पुष्टि हो जाती है, क्योंकि वे महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण ने महात्माओं के संबंध में इस प्रकार कहा है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पृथा पुत्र, जो महापुरुष भुलावे में नहीं आते, वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे भक्ति में पूर्ण रूप से रत रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अव्यय भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा माया के फंदे में नहीं पड़ते, वरन वे आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। इसलिए वास्तविक महात्मा सदैव भगवान की भक्ति में रत रहता है। पृथु महाराज में महात्मा के सभी लक्षण प्रकट थे, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में धुर्यो महताम अर्थात महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ओम ज्ञान चक्षुरोन्मीलित तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्विति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च विदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आत्मतुष्ट कैसे होना है, ये विषय है। कौन आत्मतुष्ट है, कौन नहीं है। आत्मतोष अर्थात जब आंतरिक संतुष्टि होती है। बाह्य संतुष्टि ये वास्तविक संतुष्टि नहीं है। यहां आप्त कामम ये शब्द इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आप्त कामम का क्या अर्थ है?
अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लें
आप तो कामम जिन्होंने अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लिए हैं महाराज पृथु अपने तत्व ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। इसको आत्माराम कहते हैं। आत्माराम जो आत्मा में रमण करते हैं, अपने अंदर ही अंदर रमण करते हैं। रम धातु, इसकी चर्चा भी एक बार कर चुके हैं ना। रम धातु से कौन से शब्द उत्पन्न होते हैं?
रमण
और
आराम।
आराम और भगवान का नाम
राम।
भगवान का नाम राम क्यों है? वो कोई कौन सा श्लोक बताएंगे? कौन श्लोक बताएंगे इसके बारे में? भगवान का नाम राम क्यों है? क्या अर्थ इसका?
रमन्ते योगिनः अनन्ते अनंत। जो योगी होते हैं वो रमण करते हैं अनंत,
अनंत में रमण करते हैं। तो ये अनंत क्या है?
राम
सत्यानंदे रमन्ते योगिनो अनन्ते। तो योगी जन रमण करते, जो वास्तविक योगी होते हैं वो रमण करते हैं या आनंद लेते हैं। रम मतलब आनंद लेना। तो ये योगी जन आनंद लेते हैं किसमें? अनंत में। उनका आनंद कैसे होता है जिसका कोई अंत ही नहीं होता? संसार के आनंद में अंत होता है। तो अंत जिस आनंद का नहीं होता इसको अनंत कहते हैं। तो ये किस प्रकार का आनंद है जो अनंत होता है?
सत्यानंद।
वो आनंद अनंत होता है जो सत्य होता है। यदि कोई आनंद, किसी भी आनंद का अंत होता है तो वो सत्यानंद नहीं है, वो मिथ्यानंद है। सही है ना? तो यदि हम ऐसे कोई आनंद प्राप्त करना चाहते हैं जो सत्य है तो अनंत होना चाहिए। परंतु हमारे अनुभव में क्या कोई ऐसा आनंद है जिसका कोई अंत नहीं होता? जब हम अच्छा कोई स्वादिष्ट भोजन स्वीकार करते हैं, और खास करके जब हम बहुत भूखे होते हैं और अच्छा भोजन हमें मिल जाता है, प्रसाद मिलता है, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कितने समय के लिए? 3-4-5 घंटों के लिए, 6 घंटे के लिए। उसके बाद फिर से भूख लगने लगती है। तो जो संतुष्टि हमें मिली उस भोजन स्वीकार करने के बाद, वो थोड़े समय के लिए रहा। इसलिए ज़्यादा समय तक ये संसार का जो आनंद है टिकता नहीं है। एक चीन के दार्शनिक हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध थे। उनका नाम था कन्फ्यूशियस। नाम किसने सुना है? कन्फ्यूशियस नाम। बहुत एक प्राचीन दार्शनिक थे। भक्त नहीं थे, एक दार्शनिक थे, बुद्धिमान थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि यदि आप 1 घंटे के लिए सुखी रहना चाहते हो तो भोजन खाओ। तो भोजन लेने से संतुष्ट हो जाते हैं ना 1 घंटे के लिए, बाद में फिर से भूख लगती है। यदि आप 6 महीने के लिए सुखी रहना चाहते हो तो विवाह कर लो। क्या तात्पर्य? 6 महीने के बाद सुख नहीं रहेगा। और यदि आप जीवन भर सुखी रहना चाहते हो तो एक बगीचा उगाओ। क्योंकि जीवन भर बगीचे में आनंद ले सकते हो। पृथ्वी के साथ रहोगे, मिट्टी के साथ रहोगे, फूलों के साथ रहोगे, फूलों के सुगंध फूलों को सब देखकर संतुष्ट रह जाओगे। तो हम लोग इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने क्या कहा, एक घंटा सुखी होना चाहते भोजन, 6 महीना सुखी विवाह, जीवन भर बगीचा उगाओ, गूगल धाम में लिखे। और हम इसमें और एक चीज जोड़ सकते हैं जो कन्फ्यूशियस ने नहीं कहा, यदि अनंत काल तक, केवल इस जीवन में नहीं अनंत काल तक सुखी रहना चाहते हो तो कृष्ण भक्त बनो। सही है ना? तो कन्फ्यूशियस जैसे दार्शनिकों को भी एक पता होता है, भले उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं था, परंतु इतना तो उनको ज्ञान था कि संसार का सुख क्षणिक है, इसलिए इसके पीछे भागने में कोई मतलब नहीं है। तो वो सात्विक थे, इसलिए समझे कि जैसे बगीचे में रह के आदमी कुछ करेगा, ये सब सात्विक काम है, तो सात्विक काम से आदमी को शांति मिलती है। तो इस प्रकार से संसार का जो तथाकथित सुख है वो हमें सुख नहीं दे सकता, और देगा वो, ये सुख भी होता है क्षणिक सुख होता है, परंतु इतना ही नहीं, ये जो क्षणिक सुख है इसके भी परिणाम होते हैं। क्या परिणाम होते हैं? ये हमको दुख देते हैं। कौन सा श्लोक भगवद गीता का?
यही
संस्पर्श राग होगा। बोलिए,
संस्पर्श राग होगा, दुख होते अत्यंत अंत कौन थे
क्या अर्थ है इसका?
यही स्पर्श जाग होगा,
संस्पर्श जाग, केवल स्पर्श जा नहीं, संस्पर्श जाग,
स्पर्श जाग होगा। ये जो स्पर्श का सुख है वो ये सुख है, वो
थोड़ा जोर से सब लोग सुन सके,
ये स्पर्श का जो स्पर्श इंद्रिय से सुख आता है, दुख यो यो ने ये होते, तो इसे दुख ही आता है, दुख यो ने जन्म। तो अद्यंत अंत कौन थे, इसका आदि भी है और अंत भी है। तो जो बुद्धिमान है वो उसमें रमण नहीं करता।
बहुत अच्छा, यही संस्पर्श जा भोगा, ये जो भोग है जो जा उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? संस्पर्श जा, संस्पर्श, स्पर्श इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख उत्पन्न होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं श्री कृष्ण इस श्लोक में। सो स्पर्श इंद्रियों का सुख कैसे होता है, उदाहरण विस्तार में बताइए। हमारे स्पर्श इंद्रिय कितने हैं?
पांच
है। कौन सी स्पर्श इंद्रियां हैं?
आंख।
आंख को सुख कैसे मिलता है? साधारण दुनिया की बात करते हैं, आप सब की, आप सब कृष्ण भक्त हैं, आपको भगवान कृष्ण का रूप देख के बहुत आँखों को सुख मिलता है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ऐसे नहीं। तो साधारण लोगों के लिए क्या है ये, इस ये आँखों का सुख कैसे मिलता है?
सुंदर दृश्य,
कोई सुंदर दृश्य देख के। फिर दूसरा स्पर्श इंद्रिय क्या है? नसिका। तो नासिकाओं से क्या सुख मिलता है? सुगंध, जैसे लोग ये सब परफ्यूम वर्फ्यूम डालते हैं ना, तो परफ्यूम डालने से उनको थोड़ा सुगंध अच्छा रहने से अच्छा लगता है। तो ये हो गए घ्राण इंद्रिय, उनको बोलते हैं घ्राण, घ्राण मतलब सुमना। तो ये है कौन से इंद्रिय? दृश्य इंद्रिय, ये घ्राण इंद्रिय, इससे हम सुख पाते हैं अच्छे सुगंध को देख के। फिर तीसरा जिह्वा, स्वादेंद्रिय। तो स्वाद इंद्रियों से क्या होता है? अच्छा स्वाद, स्वादिष्ट कुछ हम ग्रहण करना चाहते हैं। फिर चौथा कर्णेंद्रिय या ध्वनि, ध्वनि सुनने के लिए हम कोई अच्छे गीत संगीत मधुर ध्वनि सुनना पसंद करते हैं, और कोई नहीं पसंद करते ध्वनि सुनना। और अंत में स्पर्श इंद्रिय, हमारे जो त्वचा आदि है उससे हम कोई कोमल चीज का स्पर्श करना चाहते हैं, ऐसी चीज का स्पर्श नहीं करना चाहते जो हमें चुभेगा, जो बहुत कठोर होगा, जिससे हमको कोई कष्ट होगा, ऐसे नहीं चाहते हैं। तो ये पांच हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका संबंध, हमारे इन ज्ञानेंद्रियों का संबंध तन मात्राओं से होता है तो सुख या दुख उत्पन्न होता है। तो तन मात्राएं कौन सी हैं? आंख के संबंधित तन मात्रा कौन सी है?
रूप।
नसिकाओं से संबंधित तन मात्रा?
गंध।
कानों से संबंधित तन मात्रा? शब्द या ध्वनि। जीभ से संबंधित तन मात्रा? स्वाद। त्वचा से संबंधित?
स्पर्श।
तो ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच तन्मात्राएं हैं। तो जितने भी हमारे अनुभव होते हैं वो इन पांच इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का स्पर्श संपर्क जब इन पांच तन्मात्राओं से होता है तब सुख या दुख उत्पन्न होता है। जैसे हम कोई दृश्य देखते हैं, बहुत कुरूप व्यक्ति है कोई, तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो संकल्पो विकल्पो मना है, तो मन उसको स्वीकार नहीं करता। अरे अच्छा है, बहुत सुंदर दृश्य देखते तो मन आकर्षित हो जाता है इंद्रियों के द्वारा, तो आंखों को बहुत दृश्य अच्छा लगता है। उसी तरह से कानों के लिए कोई अच्छी ध्वनि हो, मधुर ध्वनि हो, अच्छा लगता है, कोई वो अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। गधे की आवाज़ सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता, किसी कोयल के गीत सुनते हैं अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से सुख दुख ये क्या है? जब हमारे ज्ञानेंद्रियां ये स्पर्श करती हैं, संपर्क करती हैं तन मात्राओं से, तो सुख ही उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है। तो यही है ये सुख संसार का। इसलिए श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? यही संस्पर्श जा दुख भोगा, दुख योनय एवते, परंतु ये तथा कथित सुख जो उत्पन्न होता है, कभी कभी दुख उत्पन्न होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट, परंतु कभी कभी सुख उत्पन्न होता है, परंतु वो सुख भी दुख की योनि है। दुख योनय एवते, योनि अर्थात उद्गम स्थान, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, तो माँ बच्चे का कारण है, उसी प्रकार से संसार का ये सुख जो कि इस प्रकार से उत्पन्न होता है, ज्ञान इंद्रियों का संपर्क जब तन्मात्राओं से होता है उससे जो सुख उत्पन्न होता है वो सुख भी दुख का कारण है, दुख की योनि है, दुख की माता है। अच्छा, यहाँ ये है क्या? चौक का है। अच्छा, आप में से कोई यहाँ सुख कैसे लिखा है, सुख को कैसे लिखना चाहिए? हाँ है ना, इसमें आप में से कोई लिखो सुख कैसे लिखते हैं, यहाँ पर नीचे लिखो सुख। आप सब मानते हैं, यदि आपको, आप भगवद गीता पंडित हो तो कैसे लिखोगे?
तो पंडित नहीं।
अच्छा, मैं लिख के दिखाता हूँ, जो भगवद गीता की दृष्टि से यदि हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखा है इधर?
दुख।
तो सुख को सही तरह से लिखना है तो ये है। समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा इधर?
दुख।
लेकिन शब्द कौन सा था?
सुख।
सुख, लेकिन लिखा कैसे? ऐसा क्यों?
भगवत गीता के अनुसार वो दुखी।
हाँ, भगवत गीता के अनुसार ये संसार का सुख दुखी ही है। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, उसको लगता है कितना चैन से कर रहा हूं। जैसे बेलगाम की भाषा में बोलते चैनी कर रहे हैं। चैनी कर रहे हैं। पहले मुझे समझ में नहीं आया ये लोग क्या है, हम बात करते हैं। बाद में पता चला कि ये क्या कह रहे हैं। फिर लगता है कि कितना आनंद ले रहा हूं मैं सिगरेट फूंक पे, परंतु अंदर क्या होता है, फेफड़ों में सब सड़ जाते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले मेडिकल कॉलेज में मैं प्रवचन के लिए गया था, वहाँ के मेडिकल विद्यार्थियों से बात करने के लिए। तो जिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे उनके प्रयोगशाला में लेकर दिखाए कि जैसे शरीर को काट के अंदर के जो अवयव होते हैं ना, वो विद्यार्थियों को दिखाते हैं, पेट कैसे होता है, फेफड़े कैसे होते हैं। तो फेफड़े लगे हुए थे, काट के उन दिखाए उन्होंने, और एक ऐसे फेफड़े अंदर से कोयले की तरह काले काले थे। तो उन्होंने बताया, देखो ये आदमी ना बहुत सिगरेट पीता था, सिगरेट पी पी के, बीड़ी जो भी हो वो सब पी पी के वो काला पूरा हो गया था, ये वो मर गया। ऐसे होता है ना स्पर्श, लंग्स पूरे काले हो जाते हैं अंदर से सिगरेट पीने से। उसकी तरह हो जाता है। और फिर आदमी को कैंसर हो के, ये हो के, दमे की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, जो सारे के सारे बीमारियां आ जाती है। लेकिन जब वो फूंक रहा होता है, उसको क्या लगता है, आराम। फिर लाभ बाद में अंदर क्या होता है, सारे उसके फेफड़े जो है वो सड़ जाते हैं, फिर आदमी जी नहीं सकता है। तो जिस चीज को हम सुख मानते हैं, वास्तव में दुख है। तो यदि आपको कोई कहे कि सुख शब्द कैसे लिखते हैं, तो आपको कैसे लिखना चाहिए,
दुख,
दर, दुख, दुख। क्योंकि ये सुख जो है, ये दुख का कारण है। सुख ही दुख है, दुख तो दुख है ही, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होता। जब किसी को पेट में दर्द हो रहा होता है, तो उसको नहीं लगता कि ये सुख है, उसको तो पता होता है कि ये दुख है। परंतु जब सिगरेट पी रहा होता है, उसको लगता है कितना सुख है। परंतु उस बाद में दुख आएगा, वो अलग बात है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन वो जो तथाकथित सुख का अनुभव कर रहा है, वो भी वास्तव में दुख ही है। तो ऐसे सुख को दुख इसलिए कहते हैं कि आदि और अंतवंत है, अत्यंतवंत है। तो ये दुख की योनि क्यों है, क्योंकि इसमें प्रारंभ में दुख है, अंत में भी दुख है, बीच में थोड़ा कुछ हमें मिल जाता है जिसको हम सुख मानते हैं, थोड़ी राहत मिलती है। इसलिए न तेषु रमते बुधः। तो जो बुधः होते हैं, बुद्धू ने बुधः, बुधः अर्थात जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, न तेषु रमते, न रमते, वो रमण नहीं करते हैं। फिर से रम धातु, रमण, वो ऐसी चीज में रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वो दुख नहीं चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है दुख चाहता है, कोई जाके दुख को निमंत्रण करता है क्या? हम जब बचपन में थे ना, तो एक चुटकुला सुनाते थे स्कूल में कि एक पागल व्यक्ति अपने सर को जाके पीट रहा था दीवार के ऊपर। तो क्यों पीट रहा था, किसी ने पूछा, भाई क्यों पीट रहे हो अपने सर को, हाँ दीवार से, कितना दर्द होता है ना, अपना ही सर पीट लोगे दीवार के ऊपर, कितना कष्ट होता है। तो किसी ने पूछा, भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो, उसने बोला, जब मैं रोकता हूँ ना सर पीटना, तो बहुत आराम लगता है इसलिए। ये कोई बात हुई? समझ लो काय बोल लो, मराठी मध्ये काय बोल, मराठी मध्ये जरा बोल, सुनार बोल, समजून जरा, माझी मराठी तेवढी पडली नाही हा काय
ती आपलं लोक भिंतीला आपटत होता
हा
त्याला एका व्यक्तीनं विचारलं की तू का आपलं तुझं डोकं भिंतीला आपटत आहे मग त्या व्यक्तीनं म्हटलं की मी जेव्हा डोकं आपटायचं थांबतो तेव्हा मला फार बरं वाटत
हे सुख आहे संसारात हे संसार का सुख आहे थोडं बहुत दुःख से राहत मिलता है ना उसको आनंद ये आनंद नहीं है आनंद है जब इन चीजों में रमण करना हम नहीं बंद कर देंगे और अंतर अंदर का सुख हमें मिलेगा आत्म संतुष्टि आत्म तुष्टि और प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसी संतुष्टि केवल और केवल कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है तो ये कौन से श्लोक से आप जान सकते हैं श्रीमद् भागवतम के भक्ति की परिभाषा भागवतम से जहां आत्मा भी संतुष्ट हो जाती
सभी पुरुषा परो सभी पुरुषा परो धर्म
हाँ बोलो
सभी पुरुषा परो धर्म यथोर यथार यथोर भक्ति आदर्शय सही तू की प्रति यथा ययात्म सुप्रसिद्ध
पूरा विस्तार से कहो
सवे परो धर्म
सवै पुंसाम पुंसाम पुंस अर्थात मनुष्य पुंसाम अर्थात मनुष्यों के लिए सवै पुंसाम तो मनुष्यों के लिए परो धर्म मतलब सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है सवै सवै पुंसाम परो धर्मो यतः भक्ति ही अधोक्षजे अधोक्षज के प्रति अधोक्षज के प्रति हो गया अधोक्षजे भक्ति किन के प्रति अधोक्षजे अर्थात कृष्ण के प्रति तो पर धर्म है कृष्ण भक्ति परंतु केवल कृष्ण भक्ति नहीं किस प्रकार की कृष्ण भक्ति ऐसे ये कृष्ण भक्ति के गुण या लक्षण क्या होने चाहिए अहैतुकी अहैतुकी का क्या मतलब है बिना कोई हेतु के जिसमें कोई हेतु नहीं हेतु अर्थात कोई कारण नहीं है कोई भौतिक चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं है उसमें अहैतुकी और दूसरा अप्रतिहता अर्थात बिना कोई रुकावट के प्रतिहत उसमें कोई नहीं है कोई रुकावट नहीं है उसमें ऐसे नहीं कि रविवार की छुट्टी ले ली गर्मियों की ठंडियों की छुट्टी ले ली आज बारिश है आज भक्ति से छुट्टी नहीं अप्रतिहता तो ये ऐसे कृष्ण भक्ति करना ये परो धर्म है किस तरह की भक्ति करना अहैतुकी अप्रतिहता जिसमें कोई भौतिक हेतु नहीं हो जिसमें कोई रुकावट नहीं हो ऐसे कृष्ण भक्ति करने से ये पर धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है और इसका परिणाम क्या होता है
यात्मा सुप्रसिद्ध
सुप्रसिद्ध थी अर्थात
बहुत ही संतुष्ट हो
क्या संतुष्ट होती
आत्मा
संतुष्ट हो जाते हैं यया आत्मा सुप्रसीदति प्रसीद अर्थात बहुत प्रसन्न होना आत्मा प्रसन्न हो जाता जैसे कभी कभी क्या होता है कोई कोई चीज मिल जाती है ना व्यक्ति को क्या कहता है दिल खुश हो गया ऐसे कहते हैं ना लोग कुछ उनको मिल जाता है क्या कहते हैं दिल खुश हो गया दिल खुश नहीं हो जाता है यही है वो वास्तव में दिल को खुश करना है तो ययात्मा सुप्रसिद्धति वो करना चाहिए तो इस प्रकार से ये रहस्य गोकुलधाम के भक्तों को पता है इसलिए आप सब इतने आत्मसंतुष्ट हो ओके नहीं तो ये है आत्मसंतुष्ट आत्मसंतुष्टि की परिभाषा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि पृथु महाराज सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, इसलिए पूरी तरह से हम उनको आत्मसंतुष्ट थे ऐसे मान सकते हैं। वैसे अन्य प्रकार के लोग क्या साधक या सिद्ध लोग क्या आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, परंतु इसकी भी श्रेणियां हैं। तो जैसे जो ज्ञान योग में परिपूर्ण है, अष्टांग योग में परिपूर्ण है, वो भी ठीक है, भौतिक सृष्टि से परे हो चुके होते हैं, परंतु पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट उनको नहीं मान सकते। आगे चल के जब और वो आनंद के पथ में चलना चाहते हैं तो कृष्ण के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, फिर उनका परिवर्तन हो जाता है, तब वो वास्तव में आत्माराम हो जाते हैं। पहले भी आत्माराम थे, आत्म आराम, परंतु कृष्ण भक्त भी सर्वोच्च आत्माराम होता है। जो अन्य आत्माराम होते हैं, जो ज्ञान योगी अष्टांग योगी, वो भी कृष्ण भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। कौन सा श्लोक है भागवतम का? बहुत अच्छा। तो शब्द भेद करके अर्थ समझाना इसका।
जो आत्मारामी मुनि होते हैं, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा, वो कोई भक्ति बंधन में फंसे नहीं होते हैं, अपि उरुक्रम, लेकिन जो उरुक्रम भगवान
आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रम, हाँ,
कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्ति, लेकिन वो हालांकि आत्माराम हैं, यानी ज्ञान योग के पत्र होने के बावजूद भी जब वो उरुक्रम भगवान के लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं तो वो भक्ति कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्ति, जो अहैतुकी की भक्ति प्रारंभ करते हैं। इत्थं भूत गुणो हरिः, इस तरह से भगवान के अद्भुत
गुण है। बहुत अच्छा। तो जो लोग आत्मज्ञानी हैं, जो अपने आप को, जिनका आत्म साक्षात्कार हो गया है परंतु भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में सुन के, भगवान श्री कृष्ण का के दिव्य गुणों का अनुभव करके वो भी कृष्ण भक्त बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भक्ति साधारण आत्मतुष्टि से श्रेष्ठ है। साधारण का मतलब ज्ञान योग अष्टांग योग आदि के मार्गों से उत्पन्न होने वाले आत्मसंतुष्टि से भी कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे आत्माराम पुरुष भी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने दो बार बहुत विस्तार में व्याख्या की थी। तो पृथु महाराज इसी प्रकार के आत्माराम, सर्वोच्च आत्माराम पुरुष हैं, क्योंकि वो शुद्ध कृष्ण भक्त हैं। ऐसे मैत्रेय महर्षि मैत्रेय पृथु महाराज के बारे में कहते हैं। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न संतुष्टि? अभी हमारे बीच पुणे के कितने भक्त आए हैं कुल मिलाकर? तीन भक्त, दो और से कौन? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कब आए तीनों? आज आए, परसों आए। ठीक है। तो कैसे लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है।
एक गिरिवरधारी प्रभु है,
हरि बोल,
विजय कृष्ण प्रभु,
हरि बोल,
और नितिन प्रभु।
अच्छा, बहुत अच्छा।
गिरिवरधारी प्रभु पुणे में रहते हैं, अभी अहमदनगर में भी प्रचार करते हैं।
अच्छा अच्छा, छान छान, बहुत अच्छा। और कोई आए हैं बाहर से अभी? नहीं ना, ललित प्रभु बहुत अच्छा रसोई करते हैं, स्वादिष्ट बढ़िया प्रसाद। वो भी जुहू मंदिर का जो फार्म प्रोजेक्ट है ना तलासरी में, तो चौपाटी का है वाड़ा में, तो जुहू मंदिर का है तलासरी में, तो वहाँ पे तलासरी में रह के बहुत सेवा करते है ना। तो जुहू मंदिर में भी रहते हुए वो सब तरह तरह की चीज सेवाएं करते थे। पहली बार कुकुलदा पहली बार है नहीं टू थ्री टाइम्स आगे ठीक है और कोई नहीं ना मैं ठीक है सब लोग ठीक ठाक है। कल शिवरात्रि मनाई कि नहीं? नहीं अयो नहीं मनाए कुछ भी नहीं कथा भी नहीं किया शिव जी के बारे में सुबह। अरे रे 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 महा क्लीनिंग किया ठीक है उससे भी शिव जी संतुष्ट होंगे। फिर भी शिव जी के बारे में कुछ सुनना भी चाहिए था। कल राधा गोकुलानंद मंदिर में शिवरात्रि शिव कथा हुई शाम को शिव जी के बारे में का गुणगान कर। मैंने सोचा आपने किया होगा नहीं तो आज के प्रवचन में शिव जी के बारे में कुछ कहा होता। खैर कोई बात प्रसाद लिया ना सबने हाँ क्या उत्तर नहीं किसी का लिया ये ऐसे पूछना चाहिए किसी ने नहीं लिया तो हाथ ऊपर कीजिए। सबने लिया
एक घंटे पहले लिया था एक घंटे की संतुष्टि हुई
एक घंटे की संतुष्टि हुई लेकिन ये सब कृष्ण भक्त है ना। वो साधारण व्यक्ति के लिए और ये भी इन्होंने कृष्ण प्रसाद लिया। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय श्री गोकुल धाम की जय गौर प्रेमानंदे।